ओम शांति। गहन शांति के बाद शब्दों में आना कभी कभी निरर्थक लगता है। शांति में जो आनंद है, मौन में जो आनंद है, वो सर्वोपरि है। कहीं शास्त्रों में लिखा है, एक गुरु बैठा है और सामने बहुत सारे शिष्य है। न गुरु कुछ कह रहा है, न शिष्य कुछ पूछ रहे हैं। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। फिर भी शिष्यों के जो भी संशय है वो सब दूर हो रहे हैं। तो बाबा जब इस धरती पर आता है और वो जब बैठता है तो उसका केवल बैठना मात्र, उसका केवल दृष्टि देना मात्र, उसका केवल अस्तित्व मात्र ही आत्माओं के दुखों को हर लेता है, आत्माओं में नई शक्ति का संचार करता है। तो आज की जो मुरली है कितना साल पुरानी है? सुबह की अव्यक्त वाणी लगभग 79 की है ना, 36 साल पुरानी। पुरानी लगती है या नई लगती है? फिर भी नई लगती है। बाबा की कोई भी बात कभी बासी नहीं लगती है। मुरली एक ऐसी चीज है जिसे मैं कहूंगा कि एक ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है और ना ही गुठली, कुछ भी त्यज्य नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये वाक्य जो है ये कुछ काम का नहीं है। हर एक चीज, हर महावाक्य जो कि बिखरे पड़े हुए हैं, सब में गहन अर्थ समाया हुआ है। बाबा कहते हैं ना, मेरा एक एक वाक्य कैसा है मुरली का? लाखों का है। मुरलिया बहुत सुन ली, कुछ दिन पहले वरदान था, मुरलिया बहुत सुन ली, अब क्या बनो? मुरलीधर बनो। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? माया सरेंडर हो जाएगी। मुरली के राज का साज बजाओ तो माया सरेंडर हो जाएगी, संपूर्ण सरेंडर हो जाएगी। तो आज की अव्यक्त वाणी किस विषय पर है? विश्व कल्याण के ऊपर। कल्याण अर्थात, कल्याण शब्द का क्या अर्थ होता है? हित करना, भला करना। संसार की दृष्टि में कल्याण शब्द तो केवल कोई अनाथाश्रम खोल देना या वृद्धाश्रम खोल देना या किसी की मदद कर देने के लिए। परंतु बाबा ने आज जो गहन अर्थ बताए हैं, जो गंभीरता पूर्वक ये मुरली चली है, उसकी गहराई में हम आज जाएंगे। बाबा ने कहा है, स्वयं को कहां बिजी रखो? लास्ट संडे की मुरली में कोई भी एक शब्द ले लो और उसकी गहराई में जाओ। कोई भी एक टॉपिक दे दो और उसके ऊपर सोचो। जितना बुद्धि में ज्ञान का मनन और चिंतन होगा, स्वतः ही हमारी स्थिति ऊपर चली जाएगी, स्वतः ही हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तो आज की मुरली इस तरह, मैं अकेला नहीं बोलूंगा, हम ये क्लास ना होकर एक रीति से डिस्कशन होगा कि बाबा ने आज जो मुरली में जो महावाक्य उच्चारण किए हैं उसके क्या क्या अर्थ है, वो हमारे लिए कहाँ कहाँ जीवन में हम उसे ला सकते हैं। तो मुरली की शुरुआत कहाँ से है? कौन किसको देख रहा है? बाप दादा किसको देख रहे हैं? सभी बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। कौन से बच्चों को देखकर? विश्व कल्याणकारी बच्चों को देखकर बाप दादा हर्षित होते हैं। क्यों हर्षित होते हैं? क्योंकि बाप स्वयं विश्व कल्याणकारी है। हमेशा बाबा ये कहते हैं कि बच्चों के नैनों में क्या है, मस्तक में क्या है, हाथों में क्या है, पैरों में क्या है और दिल में क्या है। और आज उसने क्या कहा? हमारे लिए नहीं कहा, उसके लिए कहा। उसके संकल्प में क्या है, उसके बोल में क्या है, उसके मस्तक में क्या है, उसके नैनों में क्या है, उसके कर्म में क्या है। हमारे लिए कहता है ना बाबा, तुम्हारे हाथों में ज्ञान का कलश है, तुम्हारे दिल में दिलाराम है, तुम्हारे हर कदम में पदम है, तुम्हारे मस्तक में भाग्य की लकीरें हैं, होठों पर मुस्कान है, अलग अलग मुरलियों में अलग अलग बातें कहता है। तो आज उसने क्या कहा, उसके मस्तक में क्या है, मस्तक में क्या है, यादगार, यादगार का मणि है। उसके बोल में क्या है, बच्चों के कल्याण के युक्तियां है, भिन्न भिन्न युक्तियां। उसके कर्म में कल्याणकारी कर्म है, और उसके संकल्प में क्या है, जो ओरिजिनल मुरली है उसमें थोड़ा सा वाक्य दूसरा है, उसमें है कि बाप के संकल्प में एक ही संकल्प सदा रहता है। क्या वाक्य है, बाप के संकल्प में एक ही संकल्प रहता है, संकल्प में संकल्प। बहुत सुंदर भाषा है ये, बाप के संकल्प में एक ही संकल्प रहता है, कौन सा, बच्चों का कल्याण, कभी हो जाए, अभी अभी, तुरंत, इमीडिएट। तो बाप के संकल्प में है कि बच्चों का कल्याण अभी अभी हो जाए, बोल में है कि बच्चों के कल्याण की भिन्न भिन्न युक्तियां, नैनों में क्या है, बच्चों के कल्याण के प्रति सर्च लाइट। तो ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसा वो हमसे चाहता है। ये उसने अपने स्वरूप के बारे में आज कहा हमको कि मैं ऐसा हूं। सारे 5000 साल में ईश्वर जो है या भगवान जो है वो एक मिस्ट्री है, एक रहस्य बना हुआ है, जो कि भगवान स्वयं आकर ही, जितने रहस्यवादी है, जितने दार्शनिक है, जितने धर्मावलंबी है, संसार में जितने मत है, उन सब ने भगवान के बारे में भिन्न भिन्न बातें कही है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, पर यहाँ भगवान स्वयं आकर अपना परिचय दे रहा है। जगदीश भाई कहते हैं कि वी नो हु इज गॉड बट वी डोंट नो व्हाट इज इन द माइंड ऑफ गॉड। हमने ये तो जान लिया है ब्राह्मणों ने कि भगवान कौन है, परंतु उसके मन में क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उसके संकल्प क्या है, वो अब तक हमने नहीं जाना है। उसकी जो श्रेष्ठ दृष्टि है, जिस नजर से हमको वो देखता है, लास्ट संडे कहा था ना, बाप दादा मध्य का नहीं देखते, जो पहले जो थे और जो बनने वाले हैं वो देखते, जो बीच की बात है, जो मध्य की बात है, वो बाप दादा नहीं देखते। तो हम सभी कौन है, विश्व की कल्याणकारी आत्मा, महान आत्माएं। तो जैसा बाप वैसे हम, जैसे उसके संकल्प वैसे हमारे संकल्प होने चाहिए। बाबा कभी कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हारा मुझसे प्यार है, तुम कहते हो कि तुम्हारा मुझसे प्यार है, जिसका जिससे प्यार है उसको उसके साथ रहना चाहिए, मैं रहता हूं ऊपर तो तुम नीचे क्यों, मैं हूं अव्यक्त तो तुम व्यक्त क्यों, मैं हूं आवाज से परे तो तुम आवाज में क्यों। तो जैसा वो वैसे हम, जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, विश्व की सभी आत्माएं कहां रहेगी, उनके क्या कहा बाबा ने, सामने रहेगी, उनके जैसे नैनों के सामने रहेगी वो सारी आत्माएं, इमर्ज रूप में रहेगी बाबा ने कहा। जैसे उदाहरण दिया है, कौन सा, एक उदाहरण दिया है बहुत सुंदर, नहीं चित्रों का उदाहरण, श्री कृष्ण का उदाहरण। बाबा अपनी हर बात किसी ना किसी उदाहरण के द्वारा समझाता है, हर चीज में आप देखेंगे, ये मुरलियों में कितने सारे उदाहरण हैं, हर जगह ये कैसा है तो इसके जैसा, ये कैसा है तो इसके जैसा, हर चीज उदाहरण के द्वारा समझाता है। बाइबल में कहीं लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट की लाइफ देखो तो उसमें वो भी इसी तरह से उदाहरण देता है, पर उसने अंत में लिखा हुआ है, जब उसको सूली चढ़नी है और 12 घंटे पहले वो लिखता है, वो कहता है अपने शिष्यों से कि अब तक मैंने तुम्हें उदाहरणों से समझाया, जब मैं उदाहरणों से समझाना बंद कर दूंगा तब समझ लेना मेरे जाने का समय है। Till now I have spoken unto you in proverbs. The time has come, the time is here, the time is now. तो बाबा ने हम तो अब तक कई सारी बातें उदाहरणों के द्वारा समझाई है, जैसे वो 2 साल का बच्चा बोलता है, जैसे छप्पर पहाड़ के देता है भगवान, ये सब उदाहरण है उसके दिए हुए, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ आज की मुरली से, जैसे वो साइंस के साधन वैसे ये। तो बाबा ने कहा है जब मैं उदाहरण, वो भी अभी उदाहरण दे रहा है क्या बाबा? अभी कम से कम तो तुम्हारा कौन सा उदाहरण दिया बाबा ने? श्री कृष्ण का। क्या उदाहरण दिया? विश्व के मालिक के हाथ में विश्व का गोला है, तो विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मस्तक के बीच, मस्तक के समीप कौन हो? विश्व कल्याण, विश्व की सारी आत्माएं हो, विश्व की जितनी आत्माएं हो तुम्हारे मस्तक के समीप हो, तुम्हारे सम्मुख हो, तुम्हारे सामने हो, सदा उनके कल्याण का चिंतन होता रहे। हमें दर्द हो और पीड़ा हो जब हम देखें कि आत्माएं सोई पड़ी है, क्या करें इनको जगाने के लिए? क्या हम कर रहे हैं इनको जगाने के लिए? ऐसे हमारे अंदर संकल्प चले, वो हमें जागृत रखेगा। नहीं तो इस योगी जीवन में आत्मा मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है, और मूर्छा की उस अवस्था में ही विकर्म होते हैं। ज्ञान अर्थात स्वयं को जागृत रखना है, स्वयं को कॉन्शियस स्टेट में रखना है, अनकॉन्शियस नहीं हो जाना है। विकार अनकॉन्शियस कर देते आत्मा को, तो स्वयं को स्वयं जगाना है, स्वयं को स्वयं उठाना है, अपने अंदर के योगी को स्वयं हमें जगाना है और उसे याद दिलाना है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर बाबा ने उदाहरण दिए साइंस के। बाबा ने यह भी कहा उसके पहले कि ये कल्याण जो है इसकी रोशनी दूर की रहने वाली जो आत्मा है, चाहे अमेरिका की हो, उनको भी तुम सामने देख सकते हो। और उनको कौन सी रेस दो? शांति और शक्ति की रेस दो उन आत्माओं को जो दूर है, कल्याण की रोशनी दो। फिर उदाहरण दिए बाबा ने साइंस क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है साइंस। तीन उदाहरण दिए, कौन कौन से? टीवी, टीवी से क्या कर सकते हो? समीप दृश्य देख सकते हो, तो दृश्य समीप आ गया। टेलीफोन से क्या कर सकते हो? आवाज सुन सकते हो, तो आवाज समीप आ गया। तीसरा प्लेन, प्लेन से क्या हो गया? समय कम हो गया, समीप आ गया। तो जैसे वो, वैसे यहां है साइलेंस की शक्ति, वो है साइंस की शक्ति। बाबा ने कभी कहा है साइंस की शक्ति साइलेंस की शक्ति की रचना है, वो तुम्हारी रचना है। आज भी कहा तुम रचता हो, तुम मास्टर रचता हो, वो तो रचना है, तुमसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती। वो केवल मुख का आवाज सुन सकते हैं और तुम मन का आवाज सुन सकते हो, किससे? साइलेंस की शक्ति से। बाबा ने कभी कहा है इस आत्माओं को इमर्ज करो और उनके साथ रूहरियान करो, आत्माओं को इमर्ज करो और उनके साथ बातें करो, चाहे वो कहीं पर भी हो, तुम्हारी शुभ भावनाओं के बोल वो सुनेंगे, उनके बोल तुम सुन सकोगे। कौन से दृश्य? तुम दृश्य के चित्र का मन में जो अशांति है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो भी तुम दृश्य समीप देख सकते हो। दृश्य और व्यक्ति समीप देख सकते हो दोनों चीजों को, जैसे कि ये टीवी है, और समीप प्लेन, समय समीप। तो यहां से भी तुम किसी भी आत्मा को एक सेकंड में संकल्प से वहां तक पहुंच सकते हो। तो बाबा फिर कह रहे हैं कि इन सबको पाने का क्या साधन है? क्या साधन है? साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति को क्या करो? जमा करना है अपने अंदर, इस शक्ति को बढ़ाना है। जितनी हमारे अंदर साइलेंस पावर होगी उतना ही प्रभाव अधिक होगा। बाबा ने कभी कहा है टीचर्स बहनों से मुलाकात करते समय कि संसार के जो वक्ता है, संसार के जो स्पीकर्स है, संसार के जो टीचर है, वो सभा को हंसा सकते हैं और रुला सकते हैं, परंतु क्या नहीं बना सकते? अशरीरी नहीं बना सकते। वो केवल तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। कोई एक्टर आ जाए बहुत बड़ा तो हंसा सकता है और रुला भी सकता है, पर अशरीरी बना सकता है? नहीं बना सकता। उसके लिए परमात्म शक्ति, उसके लिए आत्मिक शक्ति, उसके लिए योग बल, उसके लिए साइलेंस पावर की आवश्यकता है, उसी से वो हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो बाबा ने कहा है इस शक्ति को जमा करने के लिए दो बातें, एक तो मन के व्यर्थ संकल्प और मुख के व्यर्थ बोल, इसको क्या कर लो? समेट लो। समर्थ ही अंतर्मुखता है, कितना सुंदर महावाक्य है, समर्थ ही अंतर्मुक्ता है, व्यर्थ ही बाह्य मुक्ता है। जब आत्मा अंतर्मुखी हो जाती है उसके बाद ही उसे पता चलता है कि अंतर्मुक्ता में क्या रस है। जो आत्मा निरंतर बाह्य मुखी है, इस संसार को देख रही है, व्यक्तियों को देख रही है, वस्तुओं को देख रही है, साधनों को देख रही है, उसे अंतर्मुक्ता का अनुभव नहीं हो सकता। ये जर्नी हमारी जो है वो आंतरिक जर्नी है। अंदर का जो जगत है वो बाहर के जगत से कहीं बड़ा है। ये माइक्रोकॉज्म, ये मैक्रोकॉज्म, ये बहुत छोटा है इसकी तुलना में। जो हमारे अंदर एक जगत है उसकी जो भीतर की जो यात्रा है वो हमें आरंभ करनी है। तो अंतर्मुखी, अंतर्मुक्ता ही समर्थ है। और ये जब शक्ति जमा होगी तो बाबा ने कहा इसके विचित्र प्रमाण तुम देखोगे। कौन से प्रमाण है वो विचित्र, जो कि शुरुआत में हुआ था फिर होगा? कौन सी चीज? यहां फिर उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे ब्रह्मा बाबा दूर बैठा हुआ परंतु फिर भी आत्माओं को, उसके स्वरूप को देखा और कहा कि तुम यहां पहुंचो, तो आत्माएं भी तुम्हारे पास आएगी और क्या कहेगी? आपने हमें बुलाया और हम आ गए। आपने हमें बुलाया, सही रास्ता मिल गया, इशारे से ठिकाना मिल गया, ऐसा अनुभव करेगी। तो ये अनुभव हमारे द्वारा होना है। ऐसे विचित्र प्रमाण होगा, ये सब अंत में होगा। जैसे पहले हुआ था फिर होगा। इसके लिए फिर बाबा ने एक और एक चीज कही, इसके लिए तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? स्वतंत्र बनना पड़ेगा, बंधनों से मुक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि जो बंधन मुक्त है वही दूसरों को जीवन मुक्त बना सकता है। तो बाबा ने देखो, अगर मुरली को देखो तो चालू कहां से की बाबा ने? अपने बारे में, उसके नयनों में क्या है और उसके संकल्पों में क्या है, और फिर हमारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप क्या हो, और फिर साइंस की शक्ति और साइलेंस की शक्ति, विजय किसकी होगी? बाबा ने कभी कहा है साइलेंस की प्रत्यक्षता ही, 87 की एक मुरली है, साइंस की, साइलेंस की प्रत्यक्षता ही बाप की प्रत्यक्षता है। साइलेंस प्रत्यक्ष हो जाएगा, साइलेंस में इतनी पावर है कि उसके सामने साइंस कुछ भी नहीं है। इतनी, और साइलेंस पावर है क्या? ये योग बल को ही बाबा साइलेंस पावर कहते हैं, या फिर शांति की जो शक्ति है उसी को। साइलेंस अर्थात केवल मौन नहीं, केवल चुप रहना, ये साइलेंस नहीं है। चुप है परंतु मन में संकल्पों की उथल पुथल। यहां तो बाबा ने क्या कहा? संकल्प ही शांत हो जाए, व्यर्थ उसमें से निकल जाए, संकल्प समेट ले मन की आवाज, बाबा ने कहा वो शांत हो जाए। संकल्प और बोल, बोल में जो व्यर्थता है वो भी समाप्त हो जाए। तो ऐसी साइलेंस की पावर हमें अपने अंदर भरनी है, तो ही हम शक्तिशाली होंगे। जिसमें जितनी साइलेंस पावर वो आत्मा उतनी अधिक शक्तिशाली। जो सारे दिन भर बाह्य मुक्ता में है, किधर क्या हो रहा है, किसने क्या किया, इसमें लगी हुई है, वो कभी अतीन्द्रिय सुख को नहीं पा सकती। बाबा ने कभी कहा है जिसने ब्राह्मण बनने के बाद भी अतीन्द्रिय सुख को नहीं अनुभव किया तो ब्राह्मण बनने का फायदा क्या? अभी भी वही खान पान की आसक्तियों में आत्मा लगी हुई है, अभी यहां घूम और वहां घूम, इधर जाऊं और उधर जाऊं, इसमें लगी हुई है। अभी तक जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया है, यहां हम क्यों आए थे? स्वयं को ये प्रश्न रोज पूछना है, हम यहां क्यों आए थे? क्या केवल सेवा करने आए थे? सेवा तो संसार में भी की जा सकती है, ये स्थान तपस्या भूमि है, तपस्या करने का स्थान है, लाइट हाउस और माइट हाउस बनने का स्थान है, स्वयं को आध्यात्मिक शक्तियों से भरने का स्थान है। कभी बाबा ने कहा है कल जो है उससे आज, या एक मिनट एक सेकंड का है, एक सेकंड पहले जो हमारी स्थिति थी, एक सेकंड के बाद हमारी स्थिति आगे हो, यह है तीव्र पुरुषार्थ। जो गलती एक बार हो गई है वो फिर न करना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ की बहुत सारी परिभाषाएं बाबा ने दी है। केवल सेवाओं के विस्तार में हमें इतना नहीं खो जाना है कि हम अपना लक्ष्य ही भूल जाए। सेवा किसकी कर रहे उसे ही ना भूल जाए, सेवा करते करते आए क्यों थे और कर क्या रहे हैं, लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक उन्नति कितनी उन्नति की है, जो संस्कार 10 साल से चल रहा है वो अब तक भी चल रहा है या उसको समाप्त कर दिया है। तो ये स्व चेकिंग करना है। फिर बाबा किससे बात किया, एक ग्रुप से, महाराष्ट्र से। क्या कहा महाराष्ट्र को, राष्ट्र महान है, स्थान महान है, तो स्थिति भी महान, तो बोल भी महान, तो कर्म भी महान, और जहां महान है वहां समस्या समाप्त। उसके बाद बाबा किससे बात कर रहे हैं, टीचर्स से बात कर रहे हैं। टीचर्स को बाबा क्या कहते हैं हमेशा, गुरु भाई। क्या कहते हैं, फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, बाप के गद्दी नशीन है। तो टीचर्स से आज बाबा क्या बात किया, क्या कहा टीचर्स को, विघ्न विनाशक कहा, और क्या कहा बाबा को। टीचर्स से बाबा कह रहे हैं कि अगर महान बनना है, टीचर्स का महत्व कब है, जब महान बनेंगे। महान किस में, मनसा वाचा कर्मणा और संपर्क में, और उसके साधन प्राप्त है, वो साधन कौन से है, संग, श्रेष्ठ संग, शुद्ध भोजन, वातावरण, तपस्या का वातावरण, सेवा और संबंध संपर्क, 5 साधन बाबा ने कहे। यहाँ का वातावरण, कभी बाबा ने इस ज्ञान सरोवर के लिए कहा, इसको कौन सा सरोवर कहे, ज्ञान सरोवर कहे या प्रेम का सरोवर कहे, अव्यक्त वाक्य है बाबा के, इसको क्या कहे। इसके लिए बाबा ने बहुत ये भी कहा है, कभी एक अव्यक्त वाणी है जिसमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये नाम ज्ञान सरोवर से प्रत्यक्ष होगा। पांडव भवन तो है, बनाया गया है ब्राह्मणों के हिसाब से, परंतु ज्ञान सरोवर बनाया गया है विश्व की सर्व आत्माओं के हिसाब से। तो विश्वविद्यालय नाम ज्ञान सरोवर प्रत्यक्ष करेगा। ये सेवा की वृद्धि की खान है अव्यक्त महावाक्य। ये माइक, यहां पर माइक आएंगे, माइक्स का मेला लगेगा बाबा ने कहा था जब ये बन रहा था। तो हम ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर है इस समय। तो टीचर्स के लिए तो बाबा सेंटरों के लिए कह रहे हैं ये बात, कि श्रेष्ठ संघ है, शुद्ध भोजन मिला हुआ है, वातावरण मिला हुआ है, सेवा भी चांस है, किस लिए, महान बनने का। और फिर लास्ट कौन सी बात कही, संबंध संपर्क। तो महान बने हो, फिर गृहस्थियों के साथ में कंपैरिजन की बाबा ने, तुलना की, कि वो तो उनको न्यारा बनना पड़ता है, आप तो हैं ही न्यारे, उनकी तो कमाल है अगर उसमें रहते हैं हंस बगुले और फिर न्यारा रहते हैं, आप तो, आपको जरूरत ही नहीं, आप तो हो ही न्यारे, फिर भी अगर मुश्किल है तो जरूर कोई एक कारण है, कहीं ना कहीं बिजी नहीं रहते। तो बिजी रहने के लिए बाबा ने 3 चीजें बताई, कौन कौन सी, नहीं बिजी किसमें रहे, सबसे पहला तो दिनचर्या सेट करनी, एक, दूसरा प्लानिंग बुद्धि, तीसरा, दूसरा पढ़ाई। सबसे कहा मनसा दिनचर्या सेट करो, जैसे अपनी स्थूल दिनचर्या वैसे मन की दिनचर्या भी सेट करनी, एक। दूसरा पढ़ाई पर अटेंशन, पढ़ाई से अगर जिसकी प्रीत है, सेंटर की बहनों के लिए बाबा कह रहे हैं, अगर उनकी पढ़ाई से अगर प्रीत है तो वो स्वयं बिजी रहेंगी और औरों को भी बिजी करेंगे। जो स्वयं ही प्रीत नहीं है तो कभी बिजी कभी फ्री। तो बिजी किसमें हो जाना है, ध्यान में। बिजी किसमें होना है, चिंतन में। बिजी किसमें हो जाना है, योग में। बिजी किसमें हो जाना है, स्व उन्नति में। और तीसरा क्या कहा, प्लानिंग बुद्धि। ऐसे नहीं कि जब डायरेक्शन मिलेगा तब प्लान बनाएंगे, बाबा ने कहा डायरेक्शन ही है, प्लानिंग बुद्धि बनो। ऐसे नहीं कि जब डायरेक्शन मिलेगा तब प्लानिंग करेंगे, जब भर्ती का प्रोग्राम आयोजन होगा तब हम भर्ती करेंगे, जब बोर्ड में लगेगा 3 दिन का है तब हम करेंगे, नहीं, डायरेक्शन ही मिला हुआ है क्या, प्लानिंग बुद्धि बनो। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। तो स्वयं की प्लानिंग स्वयं करनी है, स्वयं का चार्ट स्वयं बनाना है। ऐसे नहीं कि मंथली चार्ट जो आता है, स्वयं को हमको अपना चार्ट खुद बनाना है, वो आए वो बहुत अच्छी बात है, पर अपना दिनचर्या के हिसाब से अपना ट्रैफिक कंट्रोल हम खुद सेट करें, कहाँ रोकना है संकल्पों को, अपनी दिनचर्या, ट्रैफिक कंट्रोल, सब कुछ स्वयं स्वयं करना है, तो ही हमारी उन्नति होगी। फिर बाबा ने और एक चीज कही टीचर्स बहनों को, कौन सी, टीचर्स यहाँ कहते हैं फॉलो फादर्स, तो टीचर को, पर देखते तो निमित्त में है ना बाप को, तो आईना कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए, अगर खराब हो तो नहीं दिखेगा। आईना कैसा होना चाहिए? स्पष्ट और पावरफुल। तो हम अगर स्पष्ट और पावरफुल बने, उसके लिए क्या करना है? हमारा चित्त उतना शुद्ध होना चाहिए, उतने संकल्प पवित्र होने चाहिए, उतनी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए, उतने हमारे वाइब्रेशंस पवित्र होने चाहिए, तो ही ये आयना स्वच्छ होगा, साफ होगा, पवित्र होगा, शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, अन्यथा नहीं। ऐसी हमारी स्थिति हो। फिर और एक बात कही टीचर से बाबा ने, कौन सी लास्ट बात? बाप समान है वो, और भी एक बात। कंप्लीट। अगर टीचर्स ही कंप्लेंट करते रहेंगे, कौन सी कंप्लेंट करते हैं? टीचर्स हो बाबा ने तो ये तो कहा है, तुम सब टीचर्स हो, केवल वही टीचर नहीं है, तुम सभी टीचर्स हो। कौन सी कंप्लेंट करते हैं? मैं कमजोर हूं, माया आती है, मैं जिज्ञासु संतुष्ट नहीं रहते। कभी अव्यक्त वाणी चली थी, अगर कोई टीचर ये कहती है कि दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकती, तो ये टीचर्स की योग्यता के विरुद्ध है। अभी अभी चली है संडे में, किसी जिज्ञासु संतुष्ट नहीं, मैं संतुष्ट नहीं, मैं कमजोर हूं, ये आता नहीं, डर लगता है, बाबा को कंप्लेंट सुनना अच्छा नहीं लगता, स्वयं ही कंप्लेंट करते रहोगे तो दूसरों को कंप्लीट कब बनाओगे? प्रश्न किया है बाबा ने। तो टीचर अर्थात प्लानिंग बुद्धि, टीचर अर्थात कंप्लीट, टीचर अर्थात कंप्लेंट न करने वाली, टीचर अर्थात महान, टीचर अर्थात बाप समान, टीचर अर्थात विघ्न विनाशक, स्वयं के भी विघ्न विनाशक और दूसरों के भी विघ्न विनाशक, टीचर अर्थात सदा बिजी रहने वाली, टीचर अर्थात प्लानिंग बुद्धि हो गया, और टीचर अर्थात आईना कैसा? स्पष्ट और पावरफुल। सारी टीचर्स की बाबा ने परिभाषा दी है। हर मुरली में बाबा टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ कहते हैं, और कितनी श्रेष्ठ नजर से उनको देखते हैं। वो सभी टीचर्स हम भी हैं, बाबा का हर एक बच्चा टीचर है। बाबा ने कभी टीचर्स को ये भी कहा है, हंसी की बात, कि अगर टीचर प्यार से सेवा नहीं करती तो सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि टीचर प्यार में फंस के सेवा करती है तो भी सफलता नहीं मिलेगी। तो टीचर अर्थात बाप समान। लास्ट संडे अभी अभी मुरली चली थी ना टीचर्स के लिए, हिम्मतहीन को लाठी, हिम्मतहीन की लाठी है टीचर। अगर टीचर ही दूसरों के अवगुण देखे तो टीचर और स्टूडेंट्स में अंतर ही क्या? सेवाओं के प्लान तो स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, एक मत। तो यहाँ बाबा ने टीचर्स के साथ बात की, फिर उसके बाद में लास्ट में किससे बात की? पार्टियों से। क्या कहा पार्टियों को? कुछ तो स्मरण दिलाया पार्टियों को बाबा ने। क्या कहा? बाप किस रूप में आया है? बाप और टीचर और सदगुरु के रूप में। वर्षा, घर, पढ़ाई, वर्षा पढ़ाई और घर, घर की याद दिलाने। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि परमात्मा सर्व संबंधों से मिल जाएगा, कभी सोचा था किसी ने? कभी नहीं सोचा था। इतना बड़ा भाग्य, बाबा ने कहा ये भाग्य सदा याद रहता है। फिर यहां उदाहरण दिया और बाबा ने, भक्ति में क्या कहते हैं, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और यहां आकाश से परे रहने वाला, आकाश तत्व से परे रहने वाला, पांच तत्वों को पार कर, पांच तत्वों को फाड़कर आया है। किस लिए? प्राप्तियां कराने, सर्व प्राप्तियां कराने के लिए, सब कुछ देने के लिए। बाबा ने कहा है मैं तुम्हें सब कुछ देकर खाली होकर जाता हूं। पर भगवान कभी खाली होता है क्या? कभी नहीं होता है। कहीं उपनिषद में लिखा है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा जो है वो संपूर्ण है, उस पूर्ण में से पूर्ण अगर निकाल लिया जाए, पूर्ण में से पूर्ण अगर निकाल लिया जाए तो जो बचेगा वो भी पूर्ण है, ऐसी उसकी महिमा है शास्त्रों में। तो तो वो संपूर्ण है। और बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ देने आया हूं, सब कुछ देकर मैं खाली होकर जाता हूं। खाली वो कभी होता नहीं है, पर उसने कहा है ऐसा। तो ये सदा याद रहे, तो ये जैसे क्या हो जाए, प्रैक्टिकल लाइफ हो जाए। जैसे पास की बातें तुमको भूलती नहीं है, वैसे ये भी ना भूले। ये जैसे इतना नेचुरल हो जाए हम में, कौन मिला है। परंतु एक ही नशा लंबा समय नहीं चलता है, नशा हमारा धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाए। भगवान मिला है, भगवान पढ़ा रहे, भगवान मिला है, भगवान पढ़ा रहे, कितना दिन चलेगा। उसको सूक्ष्म 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 करते जाओ तो वो स्वमान बन जाता है। उस स्वमान में स्थित रहना कि कौन पढ़ा रहा है, कौन आया है। बाबा ने कहा है ना, स्वयं से बातें करते रहो, एकांत में स्वयं से बातें करो। जब तक वो कार्य नहीं करोगे, अध्यात्म में उन्नति बिना एकांत और मौन के नहीं हो सकती। स्थूल एकांत भी आवश्यक है आत्मा को। संगठन का अपना महत्व है, परंतु स्थूल एकांत और मौन, मन का मौन तो है ही, पर मुख का मौन भी कभी कभी आत्मा को शक्तिशाली बना देता है, आत्मा में अतिरिक्त शक्ति भर देता है। क्योंकि हमारी एनर्जी कहां जा रही है, बोल में। और एक उदाहरण दिया बाबा ने, कौन सा? दो साल का बच्चा, दो साल का बच्चा भी कितना आसानी से बाबा बाबा कहते। तुम भी बाबा बाबा कहते हो तो स्मृति स्वरूप बन जाओगे। तो दो साल का बच्चा भी भूलता नहीं है, तो तुम भी एक बाबा शब्द को क्यों भूलते हो? नॉलेजफुल के बच्चे हो तुम, बाबा ने कहा। और क्या कहा आज की मुरली में? जी, एक बाप दूसरा ना कोई, तीसरा उस वहां आना नहीं चाहिए। माताओं से मुलाकात की ना बाबा ने, शक्तियों से बात कर रहे हैं बाबा। शक्तियों का कहीं मोह तो नहीं है बच्चों में, घर में? विनाश के समय कौन सी स्थिति हो, बाबा ने कहा, हर सीन देखते समय निर्मोही और साक्षी। अभी अभी वरदान भी था ना, विनाश की लीला जब होगी तो सर्वोच्च अवस्था होगी विश्व कल्याणकारी, ये सर्वोच्च स्थिति होगी। और फिर बाबा ने पांडवों से बात की, क्या कहा पांडवों को? क्रोध और रोब। लास्ट संडे भी रोब पर बाबा ने कुछ कहा हुआ है, ऐसा क्यों होना नहीं चाहिए? ज्ञान यह कहता है यह भी रोब का अंश है। समान में स्थित रहने वाली आत्मा सबको मान देगी, चाहे वो ज्ञानी अज्ञानी, छोटे बड़े, अवगुणवान गुणवान, मायाजीत मायावश, कोई भी हो, सबको मान देगी। तो रोब और क्रोध, कब क्रोध नहीं करने का? क्रोध के कारण बताए बाबा ने, क्या कारण बताए? अगर कोई झूठ बोलता है, ग्लानी करता है, अपमान करता है, झूठ झूठा इल्जाम लगाता है, तब क्रोध आता है। क्यों आता है क्रोध? क्रोध भी कहते हैं एक क्षणिक पागलपन है। हमने यदि क्रोध किया और हम अगर कुछ समय के बाद अपने आप को देखे तो लगेगा, और हमें अगर वीडियो दिखाया गया कि ये तुम हो तो लगेगा शायद ये मैं नहीं हूं, ये तो एक पागलपन की अवस्था थी, एक मूर्छा की अवस्था थी, जागृत नहीं थे हम। वो अवस्था पूरी होने के बाद याद आया कि हमने जो कुछ किया वो क्या था। उस समय ज्ञान विस्मृत है, उस समय हम ज्ञानी नहीं है, उस समय हम भी परवश है और अज्ञानी है। उसने तो झूठ बोला, परंतु झूठ बोलने से क्रोध करना बड़ा पाप है। चाहे कोई कितना भी इल्जाम लगाए और कुछ भी करे, जैसे एक उदाहरण है, एक साधु है, वो जा रहा है किसी राज्य से राज्य में, उसको राजा के सिपाही पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं, कारागार में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुमने चोरी की है। वो कुछ नहीं कहता, चुप। 7 दिन के बाद पता चलता है चोर तो कोई और है, राजा कहते हैं उसे छोड़ दो, तो उसे छोड़ देते, वो जाने लगता है चुपचाप। राजा को आश्चर्य होता है कि वो उसे रोकता है कि तुमने कुछ भी कैसे नहीं कहा। वो कहता है कि जो हुआ वो मेरे ही किसी और जन्म का पाप था, इसके लिए सहर्ष मैंने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। ऐसे ही एक और, एक लंदन में एक सन्यासी था, जिस पर इसी तरह एक आरोप, ये तो सत्य घटना है, एक आरोप लगा लिया गया था हत्या का, उसे 22 साल की सजा हो गई, 18 साल जेल में रहा। 18 साल के बाद किसी ने कहा, पता चला किसी और ने खून किया था, तो कोर्ट ने कहा अब तुम फ्री हो। उसने कहा नहीं, मेरी अच्छी साधना हो रही है अंदर, चलने दो अभी, मुझे इधर ही रहने दो और 2-3 साल। वो तो मुझे भी पता है कि मैंने कभी किसी को कुछ नहीं किया, परंतु फिर भी यदि कुछ हो रहा है तो जरूर कोई ना कोई वो फिर हिसाब किताब है, तो उसे भी हमको स्वीकार करना है। जो कुछ घटित हो रहा है जीवन में, प्रेम से उसे स्वीकार करना। कुछ बातें ऐसी है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन्हें स्वीकार करना। मुझे याद है मैं कभी एक बहुत पहले किसी एक सेंटर पर गया था, जो कोकण एरिया में सेंटर है, वहां केवल 2 ही स्टूडेंट आते थे, वो भी 10 साल से। तो मैंने पूछा कि यहाँ 2 ही स्टूडेंट, वो बोले हम लोग सेवाएं तो बहुत करते हैं परंतु यहाँ आने को कोई तैयार नहीं है ज्यादा। पर उस बहन ने एक बहुत अच्छी बात मुझसे कही कि इस परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार किया है। वो पहले किसी और सेंटर पर थी, वहां पर बहुत सेवाएं थी, टाइम ही नहीं मिलता था योग और साधना और तपस्या के लिए, परंतु अभी इस परिस्थिति को मैंने स्वीकार कर लिया है और मैं अपना समय अपनी स्थिति बनाने में ही लगाती हूं। सेवाएं तो करते हैं परंतु लोग आते नहीं है। तो जो भी परिस्थिति हमारे सामने है उसे सहर्ष प्रेम से स्वीकार करना, स्वयं को एडजस्ट करना और चलना, ये योगी जीवन है। और स्व की उन्नति करते रहना आंतरिक, अंदर ही अंदर। तो क्रोध आने वाली भी परिस्थिति, उसमें भी क्रोध ना है, बाबा ने कहा है। ऐसे कोई हो तो हाथ खड़े करो, कितनों ने किया होगा पता नहीं। ये मुरली शायद हिस्ट्री हॉल 79 तो हिस्ट्री हॉल में ही चली होगी, मेडिटेशन हॉल। तो अपकारी पर उपकार करना, उपकारी पर उपकार करना तो आसान है, अपकारी पर उपकार करना, जो गाली दे उसे गले लगाना, जो हमारी निंदा करे उसे मन से, मुख से नहीं, मन से क्या, मित्र समझना। जैसे कहते हैं ना कि जो हमारी निंदा करते हैं वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। कैसे, जो फिल्म की शूटिंग जहां होती है, फिल्म अगर कोई बन रही हो और उसमें कोई एक एक्टर हो तो उसका एक हेल्पर होता है जो बीच बीच में आके उसे ठीक करता है, आईना दिखाता है बार बार कि सब ठीक तो है। 15-15 मिनट के बाद में जाता है, पसीना आ रहा है तो पसीना पोंछता है और आईना दिखाता है। तो जो भी निंदक है और आलोचक है वो सब क्या है, हमारे हेल्पर है। नहीं तो हमको बताएगा कौन, हम तो यही सोचेंगे हमारी स्थिति तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पुरुषार्थ एकदम फर्स्ट क्लास। पर जब तक कोई कहे नहीं कि ये ऐसा है, तो निंदक के सामने क्रोध की करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा है कोई बता तो रहा है, कोई बताए नहीं तो हमारी उन्नति कैसे होगी, हम तो अपने ही नशे में रहेंगे। कोई तो आकर बहे, कोई तो आकर बताए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, चाहे कोई कुछ भी करे परंतु हमारी स्थिति अचल हो, आंतरिक स्थिति। वो दिखाया है कभी बुद्ध के जीवन में, एक व्यक्ति आता है और उसके मुंह पर थूक देता है, वो शांत कुछ नहीं कहता, उसे कपड़ा लेता है और पोंछ देता है। वो व्यक्ति इतना क्रोध से भरा होता है, इतना क्रोध से भरा होता है कि उसका अपने ऊपर वश ही नहीं है, वो शब्द वहां पर अधूरे अपूर्ण हो रहे, वो शब्दों का काम ही नहीं वहां पर, वो केवल अपनी कर्म से व्यक्त करता है अपने क्रोध को। तो बुद्ध का जो शिष्य है आनंद, उसको बहुत क्रोध आता है, वो कहता है आपने कुछ कहा ही नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते और कुछ कहना है, और कुछ करना है, बस इतना ही कहते। वो व्यक्ति चला जाता है, क्या कहते उससे कि और कुछ करना है, और कुछ नहीं बस। दूसरे दिन वो व्यक्ति पुनः आता है, रात भर वो व्यक्ति सो नहीं पाता है, सोच के मैंने ये क्या कर दिया, इतने बड़े महान संत को मैंने ये क्या कर दिया। उसे आत्मग्लानि होती है, पश्चाताप होता है मन ही मन। दूसरे दिन अगर इतना रोता है और उसके चरणों में गिर जाता है, फिर बुद्ध वही कहते हैं और कुछ कहना है, और कुछ करना है। तो आनंद उसको कहता है, उसका शिष्य, कमाल है आपकी भी। कल आप, फिर वो जो व्यक्ति है वो कहता है कि मैंने कल आपको थूका तो शायद आपका मेरे लिए अब प्रेम कम हो गया होगा, आज तो मैं माफी मांग रहा होगा, परंतु फिर भी आपके मन में मेरे लिए प्रेम तो। बुद्ध कहता है कि तुम्हारे थूकने से या मेरे चरणों में गिरने से मेरे प्रेम में कोई कमी, मेरे प्रेम से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं उस अवस्था को पाया हूं जहां पर अचल शांति है, अचल प्रेम है, विश्व की सब आत्माओं के लिए प्रेम है। वहां वहां किसी के कुछ करने से उस वो प्रेम प्रभावित नहीं होने वाला है। तो हमारी स्थिति ऐसी अचल अडोल हो, शांति के सागर से ऐसी शांति हमारे भीतर समाई हुई हो कि बाहर की कोई भी हलचल हमें अशांत ना करे, ऐसा हमारा योग का घन अभ्यास हो। बाबा यहां क्रोध से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। क्रोध से मुक्त हुआ जा सकता है धैर्य से। क्रोध से मुक्त होने की विधि है सत्य पर विश्वास। जब झूठा इल्जाम लगाया जाता है तब हमारा सत्य का विश्वास थोड़ा कम हो जाता है, हम सत्य को सिद्ध करना चाहते हैं। जबकि बाबा ने कहा है सत्य के सूर्य को असत्य के बादल छिपा नहीं सकते, परंतु अगर असत्य हो रहा है तो हम उसे सिद्ध करना चाहते हैं। दो और दो चार, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। परंतु यदि कोई कहे दो और दो पांच, तो फिर फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, तो उसका विस्तार है, असत्य का विस्तार है, सत्य का कोई विस्तार नहीं है। तो हमारी सत्य की शक्ति पर विश्वास हो। और एक चीज है कि जो हमारा क्रोध का संस्कार है, जो अज्ञान काल में था, ऐसे बहुत सारे हमारे संस्कार हैं जो अज्ञान काल में भी थे और फिर ज्ञान में आने के बाद उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, फिर भी वो चलते जरूर है, अभी तक चल रहे हैं, परंतु उन्होंने रूप परिवर्तन किया है, परंतु वो वही है। जैसे कोई एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति था इतना क्रोधी था, सारे गांव में सबसे क्रोध करता था, सबसे झगड़ा करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को ही मार दिया, कुएं में ढकेल दिया, फिर उसको बहुत पश्चाताप हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। वो सोचता है बस अब मैं संन्यास ले लेता हूं। एक गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है मुझे संन्यास लेना है, इस क्रोध से मुझे मुक्ति दिलाओ। गुरु कहता है बस तुम सन्यासी हो जाओ तो क्रोध से मुक्त हो जाओगे। अब वहां उसके जीवन भर क्रोध चला था, अब क्रोध ने अपनी दिशा को परिवर्तन किया है, अभी उसका क्रोध स्वयं पर है, वो स्वयं को सजा देना चाहता है। गुरु अगर एक बार खाना खाता है तो वो दो दिन में एक बार खाता है, सारे शिष्य अगर छाव में सोते हैं तो वो धूप में सोता है, इस तरह की वो साधना चालू करता है। ऐसी साधना चालू करता है कि उसका शरीर कमजोर हो जाता है, परंतु वो क्रोध अभी भी अंदर ही है, क्योंकि उसका दमन किया है उसने, उसको रूपांतरित नहीं किया है, साधनाओं से दबा दिया है उसे। और फिर धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि तो अपने गुरु से भी आगे निकल जाता है वो, क्योंकि उसे जब वो दूसरों को परेशान करता था तब लोग उसे गालियां देते थे, अब वो खुद को परेशान कर रहा था तो लोग उसकी महिमा गा रहे हैं। बस ये एहसास ही उसको लगता है और परेशान करो स्वयं को, और पीड़ा दो शरीर को, तो मैं और प्रसिद्ध हो जाऊं। परंतु वो क्रोध वैसा ही बना रहता है। और एक दिन ऐसा दिखाया कि वो बैठा हुआ है तो उसका एक अज्ञान काल का, मतलब उसके अज्ञान काल का, जब वो संन्यस्त नहीं था तब का एक मित्र आता है और मित्र उसे तुरंत पहचान लेता है कि ये तो वही व्यक्ति है क्रोधी। परंतु जब व्यक्ति सीट पर बैठता है तो आसानी से जो पुराने लोग हैं उनको नहीं पहचानता, नहीं तो उसका मान थोड़ा कम हो जाता है ना क्योंकि फिर हम भी ऐसे थे, ये स्मरण आता है। तो उसका वो व्यक्ति, वो जो मित्र होता है, उसको आश्चर्य होता है। अब ये जो सन्यासी होता है उसने अपना नाम भी एक रख दिया होता है, शांतिनाथ। पहले वो क्रोधी था, अभी शांतिनाथ। तो उसका जो मित्र है वो उसको पूछता है कि आपका नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम, शायद तुमने अखबार नहीं पढ़ा, रेडियो नहीं सुना, मेरा नाम शांतिनाथ है। फिर यहां वहां की बातें चलती है, फिर वो पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो यहां उसको फिर वापस क्रोध आता है थोड़ा, अभी अभी तो कहा कि मेरा नाम शांतिनाथ है। धीरे धीरे क्रोध बाहर आ रहा है। अभी कितनी बार, अभी अभी 10 मिनट पहले ही मैंने तुमको कहा है कि मेरा नाम क्या है, मेरी प्रसिद्धि शायद तुमको पता नहीं है। फिर यहां वहां की बातें, फिर वो पूछता है कि आपका नाम क्या है महाराज। अब तो वो बस अपना वो जो डंडा रहता है वही उठा लेता है। तो उसका मित्र कहता है कि बस यही है, आदमी वही आदमी है, बस यही पूछने के लिए इतनी बार पूछ रहा था, यही जानने के लिए कि यहां तो परिवेश ड्रेस बदल गया, परंतु क्रोध तो वैसा के वैसा ही रहा, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं किया है, वो संस्कार वैसा ही रहा है, उसने केवल दिशा परिवर्तन की। हम भी पहले क्या थे, बाबा का ज्ञान मिला यहाँ आ गए, ड्रेस चेंज हो गई, बैच लग गई, परंतु वो जो संस्कार है वो अब तक चल रहा है, उस पर हमने काम कहाँ किया है, हमें क्या पता वो अभी तक है सूक्ष्म रूप से। परिस्थितियों के समय वो प्रकट होता है, वैसे नहीं प्रभु, वैसे वो शांत रहता है, वो रहता ही है, जैसे काम वासना है वो है, उस पर अगर काम नहीं किया जाए तो वैसी रहेगी, उसको बस अवसर की तलाश है, अवसर सामने आते ही वो बाहर निकलेगी, क्योंकि केवल दमन मात्र किया है उसका, उसका रूपांतरण नहीं किया, उदात्तीकरण जिसको कहते हैं, सब्लिमेशन जिसको कहते हैं, वो नहीं किया है। तो क्रोध से मुक्त ऐसी हमारी स्थिति हो। और भी कुछ कहा इस मुरली में बाबा ने, कोई पॉइंट? स्पष्टवादी अर्थात ट्रांसपेरेंट, जैसे हम हैं, बाबा ने कहा अव्यक्त तो पालना का अगर वरदान का अनुभवी अनुभव करना है तो उसके लिए स्पष्टवादी बनना पड़ेगा, जैसे है वैसे बाबा के सामने हो, ऐसे नहीं कहे कुछ रहे, कर कुछ रहे, सोच कुछ रहे, बोल कुछ रहे, स्पष्टता, हमारा व्यक्तित्व ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कुछ छिपा हुआ ना हो, लोगों के सामने दूसरा, अंदर दूसरा, कमरे के अंदर दूसरे, भीड़ में कुछ और, ये ना हो, ऐसी हमारे अंदर स्पष्टवादिता हो। फिर बाबा ने आज त्रिमूर्ति शक्तियों के लिए भी कहा ना, मन बुद्धि संस्कार क्या है वरदान में, हम रचता है, ये हमारी शक्ति है, अधिकार की शक्ति से इनको वश में करो, इनका यूज करो, सहयोगी बनाओ इनको, और जो स्थूल साकार कर्मेंद्रिय है उनको भी सहयोगी बनाओ, क्योंकि हम मास्टर रचता है। तो आज की सारी मुरली का सार है, अपने अंदर साइलेंस की पावर भरनी है, अपने को शक्तिशाली बनाना है, विश्व की सारी आत्माओं को आंखों के सामने इमर्ज हो, उनकी आवाज सुनना, उनसे बात करना, उस दृश्य को देखना, उनको सकाश देना, उनका कल्याण करना, परहित समान, ऐसे कहते हैं ना, परहित समान पुण्य नहीं भाई, परहित जैसा कोई महान कार्य नहीं है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा देना समान अधर्म का कोई काम नहीं है, तो ये सर्वश्रेष्ठ काम है हमारा, इस जिम्मेवारी की हमें निरंतर, हमें ज्ञान हो, पता हो, स्मरण हो, हमारे बुद्धि में वो गूंजता रहे, तो ही हम वो बाबा के सामने हम अगर खड़े रहे तो बाबा ये कहे कि बाबा तुमसे बहुत खुश है कि तुमने मेरी सभी आज्ञाओं का पालन किया है, ऐसा एक दृश्य बनाए कि हम बाबा के सामने और बाबा हमसे कह रहा है कि बाप दादा बच्चे तुमसे बहुत खुश है क्योंकि तुमने श्रीमत को ही अपना जीवन बनाया है, बाप की सभी आज्ञाओं का पालन किया है। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, प्लानिंग बुद्धि आत्मा हूँ, इतने सारे समान बाबा ने दिए, कभी क्रोध के लिए कह रहा है, कभी मोह के लिए कह रहा है, साक्षी स्थिति के लिए कह रहा है, एक ही मुरली में न जाने कितने सारे पॉइंट्स है, अगर सारा दिन भी हम इसी चिंतन में रहे तो व्यर्थ आ नहीं सकता, व्यर्थ स्वतः ही विलीन हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा, स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ अंतर्मुखी और महान योगी की तरह हो जाएगी। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।